नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। गृह मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया है। यह रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। इसमें आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया है। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत का स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने देश के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है।
जो लोग राष्ट्रपति भवन देखने आएंगे उन्हें राजा जी के योगदान से परिचित कराया जाएगा। भारतीयों चेतना और समस्त भारतवासियों विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों से जुड़ाव राजा जी के विचारों और कार्यों में दिखाई देता है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस अवसर पर कहा कि भारत का औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्ति का सफर कोई एक घटना नहीं है, बल्कि यह शासन, कानून, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान के क्षेत्र में सतत परिवर्तन है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने कहा कि राजा जी की बौद्धिक गहराई, नैतिक साहस और राष्ट्रीय सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजा गोपालाचारी उत्सव एक अद्भुत पहल है जो राष्ट्र के प्रति सी राजगोपालाचारी के महत्वपूर्ण योगदान के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों से बातचीत की। आज जारी एक वीडियो में श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी सहकारी समिति का उद्देश्य चालकों को उनके काम का स्वामित्व देकर उन्हें सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी के अनूठी पहल सारथी दीदी का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस सुविधा के माध्यम से महिला यात्री अपनी यात्रा के लिए महिला चालकों का चयन कर सकती हैं।
आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविजन करेंगे। जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी दे। इससे किसी का कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। सारथी दीदी सबसे ज्यादा क्लिक करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक समिट में भारत की क्षमताओं की वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रशंसा हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सभी कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागशी तथा विपुल एम पंचोली की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बने वायु गुणवत्ता संकट से निपटने के लिए जवाब मांगे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रामसर मान्यता प्राप्त क्षेत्र पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता नगर निगम की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय द्वारा कई बार इन्हें हटाने के आदेश दिए जाने के बावजूद सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी शामिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य सरकार अवैध निर्माणों को हटाने में असमर्थ रहती है तो केंद्रीय बलों को यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतगणना पूरी होने के बाद आज तमिलनाडु के अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। इस नई सूची के अनुसार मतदाताओं की संख्या जो पहले 6,41,00,000 थी घटकर 5,67,00,000 हो गई है। भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने कहा है कि इजराइल इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देश निर्णायक रूप से आगे बढ़ेंगे। मुंबई में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 के ग्रुप 1 में जिम्बाब्वे ने वेस्टइंडीज से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।